हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, ये कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। ये कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग सत्य त्रेता द्वापर तथा कलि के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। ये युग 17,28,000 वर्ष तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और ये युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का रास होता है और पाप बढ़ते हैं। ये युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। ये युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल के अवतार धारण करते हैं, आसुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग 1,000 चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के 1 दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के 100 वर्ष की गणना के अनुसार पृथ्वी के इतना लंबा आंकड़ा दिया है, वर्ष के तुल्य है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से ये बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारणानों में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है। चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु काल क्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। तो मंगलाचरण पेज नंबर 1। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सहस्रयुग पर्यन्तम् आर्यत् ब्रह्मणो विदु रात्रिमेव सहस्रान्तम् तेहो रात्र विदोषना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का 1 दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो ये बहुत ही अच्छा तात्पर्य है हम भगवद गीता का, ये जो श्लोक जिसमें ब्रह्मा के आयु का वर्णन हम भगवान करते हैं। तो परम भगवान कृष्ण भगवद गीता का ये जो संदेश है अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में दे रहे हैं और अलग अलग उपदेशों के बाद ये जो अध्याय है जिसको अक्षर ब्रह्म योग भी कहा जाता है, ये एक ऐसा अध्याय है, 8वां अध्याय, जिसमें अधिकतर भगवान मृत्यु का वर्णन करते हैं। किस चीज का वर्णन करते हैं? मृत्यु का। तो भौतिक जगत में देखा जाए या जनरली हम इस्कॉन के प्रोग्राम्स में जाते प्रवचन सुनते हैं तो अधिकतर तीन चीजों के बारे में हमें सुनने को मिलता है। एक तो मृत्यु के बारे में सुनने को मिलता है, दूसरा भौतिक काम लस्ट के बारे में, और तीसरा भगवान का पवित्र नाम। तो इन तीन चीजों पर अधिक से अधिक जोर दिया जाता है। इसलिए कई बार जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, जो अभक्त है, वो जब मृत्यु का वर्णन सुनते हैं, मृत्यु की चर्चा जब हम करते हैं, तो वो कहते हैं कि कुछ अमंगल बातें क्यों कर रहे हो, कुछ शुभ शुभ बोलो ना। मृत्यु के बारे में बोल रहे हो, जन्म के बारे में बोल रहे हो, बुढ़ापे के बारे में बोल रहे हो, व्याधि के बारे में बोल रहे हो, थोड़ा सा कुछ शुभ शुभ बातें करो, कई बार लोग कहते हैं। तो क्यों ऐसा लगता है उनको? क्योंकि वास्तव में उनके हृदय में बहुत विशाल भय है। और भय क्यों है व्यक्ति के हृदय में? भयम द्वितीय अभिनिवेश शाप, भागवतम कहता है। भय का एकमेव कारण क्या है कि भगवान के अलावा दूसरे चीजों में हमारे हृदय में आसक्ति विकसित होती है, जिसके कारण व्यक्ति संसार में सदैव भयभीत रहता है। यही एक कारण है भय का प्रमुख कारण। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति सोचता है मृत्यु जैसे ही नाम लिया जाता है, उसको पता है कि सारी चीजें मुझसे छीनी जाएगी, सारी चीजों से मैं दूर हो जाऊंगा। अपने जीवन में मैंने इतनी सारी चीजों को इकट्ठा किया है, इतना नाम, शौहरत, ऐश्वर्य, बल, सुंदरता, धन इत्यादि मैंने प्राप्त किया है, अरे मृत्यु का नाम सुनते उसको लगता है कि ये चीजें, ये मृत्यु इन सब चीजों से मुझे अलग करेगा। तो भौतिकतावादी व्यक्ति जो भक्त नहीं है, वो मृत्यु के बारे में सुनना नहीं चाहता, अपने जीवन के सत्यता के बारे में जानना नहीं चाहता, वो एक तो बोलना नहीं चाहता मृत्यु के बारे में, सुनना नहीं चाहता, चर्चा नहीं करना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, वो इन चीजों को ढक के रखना चाहता है, इसको खोल के देखना नहीं चाहता। तो जो भगवान का भक्त बनना चाहता है, जो साधक है, उसके लिए इसका वर्णन सुनना बहुत आवश्यक है। तो यहां ब्रह्मा की आयु का तो वर्णन भगवान ने किया है, लेकिन क्यों कर रहे हैं भगवान ये भी बताने के लिए है कि ब्रह्मा की तो इतनी बड़ी आयु है जिसकी तुलना करना असंभव है, हम इमेजिन नहीं कर सकते। अब देखो बारिश का दिन आता है तो ये जो एक कीड़े होते हैं, जो लाइट जब रात्रि में चलती है तो उसी समय वो जन्म लेते हैं, पूरी रात उनका फैमिली भी हो जाता है, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, सुबह देखो तो सारे मरे हुए नजर आते हैं। तो पूरा लाइफ साइकिल, और उनको यदि बोला जाए कि मनुष्यों की आयु 100 साल की है, वो सोचेंगे 100 साल, मच्छर की आयु कितनी है? कुछ घंटों की है। एक मच्छर जन्म लेता है कुछ घंटे पूर्व, उसके बीच वो स्कूल भी जाता है, कॉलेज भी जाता है, आईटीज में वर्क भी करता है, फिर बच्चे भी होते हैं, फिर उनका विवाह भी करता है, और फाइनली किसी को काटने जाता है तो उसको एक थप्पड़ मार दे तो मर जाता है बेचारा। तो मच्छर को बोला जाए कि मिस्टर मॉस्किटो, कि मनुष्यों की आयु कितनी है? 100 साल। हाँ, वो सोच नहीं सकता, कान इमेजिन। हाँ, तो हमें भी यदि कहा जाए ये ब्रह्मा नाम की क्या ऐसी वस्तु है जिनकी आयु कितनी है, इतनी लंबी, 1000 चतुर्युग, ये 4 युग जब 1000 बार आते हैं तो 1 दिन होता है, वैसे ही 4 युग फिर से 1000 बार आए तो रात्रि होती है। तो इस प्रकार से 100 साल की आयु ब्रह्मा की है, लेकिन फिर भी वो भगवान जो महाविष्णु के रूप में कारणार्णव सागर में लेटे हैं और उनके सांस से, उनके रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं, जब वो सांस छोड़ते हैं ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और जब सांस लेते हैं
विलीन हो जाते हैं। तो ये आयु किसकी है? ब्रह्मा की है। इतनी छोटी आयु है, एक सांस लेना, एक सांस छोड़ना और सांस लेने में जितना समय लगता है भगवान को, उतनी आयु किसकी है? ब्रह्मा की है। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इस चीज को स्थापित करते हैं कि वास्तव में हमें ये जानना चाहिए कि हमारे पास भी समय अधिक नहीं है, हम भी मरणशील हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एज श्योर एज डेथ। बाकी चीजें श्योर है या नहीं हमें पता नहीं है, लाइफ में एक चीज निश्चित है और वो क्या है? मृत्यु है। बाकी सब चीजों के लिए है गिनीज जो बुक है, रिकॉर्ड बुक, उसमें नाम लिखा जाता है, लेकिन आज तक नहीं लिखा गया कि कोई हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग डेथ वन में सरेंडर टू लॉर्ड इन एडवांस। मृत्यु के बारे में जब हम जानते हैं तो हम पहले से क्या करते हैं? एडवांस में ही कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। तो इसलिए जो भी हमारे जीवन की कार्यकलाप है, जो भी एक्टिविटीज है, वो वास्तव में हमें एक ओर लेके जाती है, और वो वासली मोड़ क्या है? कृष्ण एक शरणम, कृष्ण की एकमात्र शरण ग्रहण करना। तो भगवान अर्जुन को सबसे पहले ये वर्णित करते कि अर्जुन जब ज्ञान की चर्चा करते हैं कृष्ण, तो भगवान कई सारे ज्ञान का वर्णन करते हुए कहते कि ये भी एक नॉलेज का पार्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। अर्जुन को कहते अर्जुन मेरा दर्शन करने से पूर्व अच्छी तरह से इन चार चीजों का दर्शन करो, हाँ तो मेरे शरणागत होना तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। तो वो चार चीजें भगवान कहते जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इसलिए भगवान ने इस मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लाइफ का, वो वास्तव में डोर ओपन करता है हमारे जीवन का, या तो वैकुंठ के लिए या तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, या तो मृत्यु वो डोर है जहां से आप एंटर कर सकते हो कृष्णा की ओर, या तो फिर पुनः इस भौतिक शरीरों में वापस भ्रमण करने के लिए आ सकते हो। इसी कारण से हाँ भगवान ये जो अक्षर ब्रह्म योग है, आठवां अध्याय है जिसका टाइटल ये भगवत प्राप्ति, जिसमें वर्णन करते हैं, शुरुआत के श्लोकों में भगवान ने वर्णन किया है अंत काले च मामेव यम यम स्मरति मद्भाव, जिस जिस भावना से मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागोगे उस प्रकार का शरीर तुम प्राप्त करोगे। अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागोगे तो यह अर्जुन निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो हमें मृत्यु बहुत भयावह लगता है, हम भयभीत रहते हैं। क्यों भय हमें मृत्यु का? क्योंकि हमारे लिए नेचुरल नहीं है। पहले चीज क्या है? हमारे लिए मृत्यु स्वाभाविक नहीं है। और दूसरी चीज क्या है? इसलिए हमें ये मृत्यु बहुत भयावह लगता है क्योंकि हम अपने शरीर से सबसे अधिक आसक्त हैं। भागवत में दधीचि मुनि का वर्णन आता है छठे स्कंध में। तो दधीचि मुनि के पास जब इंद्र जाते हैं, भगवान कहते हैं कि वृत्रासुर को मारने के लिए तुम्हें दधीचि मुनि जिसका शरीर बहुत सदृढ़ है उनके पास जाओ और उनसे कामना इच्छा करो कि मुझे आपकी हड्डियां चाहिए, उनसे हड्डियां लो और उससे वज्र बनाओ। तो इंद्र सारे देवता जाते हैं दधीचि मुनि के आश्रम में और दधीचि मुनि कहते हैं, दधीचि मुनि को कहते हैं कि हमें आपकी हड्डियां चाहिए। सोचो आपके पास कोई आए, हमें आप हमारा मोबाइल मांगे तो भी इतनी समस्या है, हड्डियां तो दूर एक थप्पड़ देंगे हम, हड्डियां मांग रहे हो उनसे, कोई कहे ठंड लग रही है आपकी शॉल या स्वेटर दे दो तो हजार बार हमें सोचना पड़ता है। लेकिन वहां ये देखो, हम तो जानते हैं कि दान तो हम धन मांगते, किससे दान, किसी से कहते चलो मंदिर में राइस दान करो, कुछ सब्जियां दान करो, कुछ ईटे दान करो, गाड़ी दान करो, लेकिन यह क्या डोनेशन कलेक्शन के लिए गए थे देवता? हड्डियां। और वो भी एक महान ग्रेट ऋषि के पास, दधीचि के पास, और उनके पास गए कि आप हमें आपकी हड्डियां दे दीजिए। ये सुनते ही दधीचि मुनि हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे देवताओं, आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि मृत्यु, इस शरीर को जब त्यागना होता है कितनी वेदनाएं होती हैं, आज कितना कष्ट होता है, इसका ज्ञान नहीं आपको, और आप मुझसे हड्डियां मांग रहे हो। तो दधीचि मुनि इस प्रकार से बता रहे थे। तो देवताओं ने कहा कि जो परोपकारी व्यक्ति होता है, दूसरों के कल्याण चाहता है, वेल विशर होता है सारे जगत का, वो दूसरों के हित के लिए कुछ भी चीज देने के लिए तैयार है, इवन अपना बॉडी भी दे सकता है। तो दधीचि मुनि कहते कि वास्तव में आप लोग बहुत बुद्धिमान हो और बुद्धिमता पूर्ण बातें कर रहे हो। दधीचि मुनि कहते कि एक चीज एक व्यक्ति सोचे कि वास्तव में ये शरीर का क्या वैल्यू है, हाँ, कि ये अल्टीमेटली केवल कष्ट देने वाला है। ये शरीर क्या देने वाला है? कष्ट के अलावा ये शरीर कुछ और नहीं दे सकता। एंजॉयमेंट हम सोचते हैं, आत्मा शरीर के माध्यम से एंजॉय करना चाहता है, इन इंद्रियों के द्वारा, ये इंद्रिया गेट से एंजॉय करने की, लेकिन वास्तव में वो एंजॉयमेंट भी कितने क्षण के लिए है? थोड़े समय के लिए है। लेकिन ये शरीर आनंद बहुत कम समय के लिए देता है, लेकिन अधिक से अधिक यह हमें कष्ट देता है। इसलिए दधीचि कहते कि ये तो क्षण भंगुर है, कष्ट से भरा हुआ है, और इसको तो कुत्ते, सियार, गीद खाने वाले हैं, हाँ, और ये जब मरता है तो कोई इसका देखभाल करने के लिए आता नहीं है। तो कहते कि ऐसे शरीर का बेस्ट उपयोग क्या है? दूसरों के हित में लगाओ। क्या करो? दूसरों के हित में इस बॉडी को लगाओ। तो ये शरीर जब हम आसक्त होते हैं तो ये कष्ट देता है हमें। तो दधीचि मुनि कहते हैं कि आप तो मुझसे मेरा शरीर मांग रहे हो। उन्होंने कहा कि इवन इस संसार में व्यक्ति सबसे अधिक किसी से प्रेम करता है तो अपने आप से प्रेम करता है, अपने शरीर से सर्वाधिक प्रीति रखता है। और वो कहते हैं कि यदि भगवान विष्णु भी आ जाए आपसे अपना शरीर मांगने के लिए कि आप शरीर दान में दे दो, तो भी हम विष्णु को भी देने के लिए तैयार नहीं है। कहते कैसे भी प्रदान करो। फाइनली दधीचि मुनि ये शरीर प्रदान करते हैं जन उनके हित के लिए। तो शरीर से हम अत्यधिक आसक्त होते हैं, प्रेम आदि के अपने शरीर से, इसी कारण से जब मृत्यु आती है तो हमें अत्यधिक कष्ट होता है। और क्योंकि हमारे लिए मृत्यु नेचुरल नहीं है, भगवान भगवद गीता में कहते न जायते म्रियते वा कदाचिन, ना ये शरीर, ये आत्मा को ना जन्म है ना मृत्यु है। तो ये शरीर को ये सारी चीजें हैं, आत्मा के लिए ना जन्म है ना मृत्यु है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, कि इसको ना शस्त्र से काट सकते हो, जला सकते हो, भिगो सकते हो, सुखा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आत्मा को, इससे ये परे है। इसलिए भगवान कहते देहिम नित्यम अवाद्योयम, कि जो देह में रहने वाला देही है उसका कभी वध करना संभव नहीं है, वो मरणशील नहीं है, ये शरीर मरणशील है। हाँ, इसी कारण से कृष्ण कहते क्यों? क्योंकि ये आत्मा मेरा अंश है, ममेव अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातना, ये आत्मा मेरा शाश्वत अंश है। और ये आत्मा बना किस चीज से है? सच्चित आनंद से। सत शाश्वत है, पूर्ण ज्ञानमय है और आनंदमय है। तो इसी कारण से शाश्वत है यह आत्मा, इसी कारण से उसके लिए मृत्यु नहीं है। तो ये जो मृत्यु बॉडी के लिए है तो उसको क्या लगता है? ये अस्वाभाविक लगता है, स्वाभाविक नहीं है मरना। लेकिन जब जीव भगवान से अलग होकर एंजॉय करने की भावना रखता है तो माया क्या करती है? उसकी गर्दन पकड़ लेती है। निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे अनादि बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे। जब जो भगवान की सेवा को छोड़कर, गुरु का काम क्या है? जीव के अंदर भोग भाव है। गुरु कौन है? वही है जो इतना एक्सपर्ट है कि जीव के भोग भाव को सेवा के भाव में कन्वर्ट करता है, वो कौन है? गुरु है। बहुत इजी। तो जीव के अंदर अनादिकाल से वो भोग करने की भावना है, जिसके कारण वो भोग करने की इच्छा रखता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको अपने माया के अध्यक्षता में दे देते हैं। और माया निकट ही खड़ी रहती है, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जैसे कई बार होता है ना, पीछे से आपके कोई गर्दन पकड़ता है तो अच्छा लगता है क्या? नहीं, अनइजी महसूस होता है। तो माया भी उन जीवों को ऐसे पकड़ती है जोर से और उसकी बॉडी में डाल देती है। सोचो गांव में कई लोग मुर्गियां पकड़ते हैं तो एक बोरे में भरते हैं, बहुत सारे पकड़ी मुर्गी डाली बोरे में, फिर उसका क्या है, उसका जो बोरी का मुख है उसको क्लोज करते हैं, फिर दूसरी को पकड़ते हैं, फिर उसको अंदर डालते हैं। तो वैसे ही ये बॉडी क्या है, एक बोरी है, एक बैग है, जीव को पकड़ा और उसके अंदर डाल दिया और फिर जीव अभी नाचने लगता है और इस बॉडी को ही सर्वे सर्व समझता है और एंजॉय करने लगता है, भोग करने लगता है और अपनी जो पहचान है इस शरीर के साथ करता है। इसी कारण से भगवान कहते कि वास्तव में आत्मा के लिए मृत्यु नहीं है। वासांसि जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते भगवद गीता में दूसरे अध्याय में कि ये जो शरीर है ये तो वस्त्रों के समान है। मृत्यु क्या चीज है कि केवल वस्त्र बदलना। हम सुबह जब कपड़े चेंज करते कितना आनंद होता है, नए कपड़े पहनने में आनंद आता है कि नहीं? स्नान करने के बाद हम तो हमेशा ढूंढते हैं फ्रेश क्लोथ होने चाहिए पहनने के लिए, दुखी थोड़े होते हैं। लेकिन जैसे ये शरीर जो वस्त्रों के समान है उसको बदलने का समय आता है तो हाँ तो हम दुखी हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाकी सब होने दो लेकिन मृत्यु नहीं चाहिए। मृत्यु को दूर हम रख रहे हैं हमेशा। तो इसलिए ये जो मृत्यु है उसको स्वीकार करने के लिए एक व्यक्ति को तैयार होना चाहिए। भगवान कहते हैं कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्ध हो कि हे अर्जुन इस युद्ध स्थल में अब मैं किस रूप में आया हूं, काल के रूप में हूं और इन सारे जीवों सारे लोगों का हरण करने वाला हूं। इसलिए भगवान कहते मृत्यु सर्व हरस शाम। दोनों प्रकार से आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं, एक तो है उनका श्याम सुंदर रूप त्रिभंग ललित जगन्नाथ के रूप में जाओ उनको शरणागत हो जाओ, और जब इस रूप को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता तो भगवान कहते मैं उनके पास जाता हूं और मेरा भयावह रूप मृत्यु सर्वहरस शाम, मृत्यु के रूप में मैं जाता हूं और उसकी सारी चीजों को क्या करता हूं, हरण कर लेता हूं। तो ये जो मृत्यु जीवन में केवल एक ही बार हमें एक्सपीरियंस मिलता है इसका, कितनी बार? अधिक बार नहीं, आप इसको एक्सपीरियंस ले सकते, अनुभव नहीं कर सकते, हर एक व्यक्ति एक ही बार इसका एक्सपीरियंस ले सकता है। और वो जो क्षण है मृत्यु का वो हमारे लिए सबसे मूल्यवान है, सबसे महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से कैमरा आपके सामने हो और फ्लैश, तो जैसे आप मुद्रा में खड़े रहोगे हंसोगे तो उसी क्षण जब फ्लैश ऑन होती है या बटन दबाया जाता है जैसे क्लिक होगा तो वही आपका फोटो आपके सामने आ जाएगा। आप जैसे आपकी मुद्रा हो, चाहे आप दुखी हो, सुखी हो, हंस रहे हो, रो रहे हो, उस क्षण के लिए। तो उसी प्रकार से मृत्यु भी एक क्षण है, एक छोटा सा क्षण है जिसके लिए हमें क्या करनी है, जीवन भर तैयारी करनी है। इसलिए तो भगवान या भागवतम में कहा गया है कई बार हम इतने अधिक लेजी हो जाते हैं भक्ति में आने के बाद भी, सोचते अभी तो बहुत लंबा समय पड़ा है, अभी तो मैं प्लेटफॉर्म में खड़ा हूं। भक्ति में आना मीन्स ट्रेन में बैठना नहीं, प्लेटफॉर्म में खड़ा होना। लेकिन आपके सामने ट्रेन चली भी जाती है आप कहां खड़े रहते हो, प्लेटफॉर्म में ही खड़े हो। हाँ, तो इसलिए हमें ये जो तैयारी है मृत्यु की वो गंभीरता से करनी चाहिए। इसी कारण से परीक्षित महाराज ने भागवत में जब कई प्रश्न पूछे हैं तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि मुझे कैसे प्रॉपरली रहना चाहिए इस संसार में, ऐसे पूछा उन्होंने नहीं, प्रॉपरली मुझे मरना कैसे है, हे शुकदेव गोस्वामी आप वो कला मुझे बताओ। हाँ, वो कहते मरना प्रॉपरली कैसे है वो मुझे सिखाओ। और फिर हाँ, परीक्षित महाराज का ये जो प्रश्न था, आता प्रचामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमानस्य सर्वथा। मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं शुकदेव गोस्वामी आपसे, जो मरने के लिए तैयार खड़ा है उसके लिए करने के लिए क्या बेस्ट वस्तु है लाइफ में, क्या करना चाहिए उसे। हाँ, तो शुकदेव गोस्वामी क्या कहते हैं उनको, वो कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च देह पूज्यच्च नित्यदः। तो जो हरि है, कृष्ण है, उनकी सेवा में नियुक्त होना, उनका श्रवण कीर्तन आदि करना, यही वास्तव में मरणशील व्यक्ति के लिए श्रेयस्कर कार्य है। तो परीक्षित महाराज मृत्यु के नजदीक थे लेकिन वो भयभीत नहीं थे, भयभीत थे नहीं थे। और वो उनका मृत्यु तो ऐसे था कि तक्षक जो उड़ने वाला सर्प है वो आकर उनको काटेगा जिसके द्वारा मृत्यु होगी, लेकिन उन्होंने कहा मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि परीक्षित का मन किस में लगा हुआ था, कृष्ण में। हाँ, हम यदि सोचे हमारा मन पूरे दिन में दिन भर कृष्ण में कितने घंटे लगता है, घंटे तो बहुत कठिन है, कितने मिनट, मिनट भी बहुत ज्यादा होता है, कितना हम हरे कृष्ण मंत्र पूरा मंत्र बोलते हैं उसमें भी कितने समय में हम बाहर ही होते हैं, कृष्ण के स्मरण से बाहर होते हैं, जब करते समय हरे कृष्ण बोलते हैं लेकिन कृष्ण का स्मरण नहीं होता है। तो इसलिए परीक्षित महाराज को भय नहीं था, उनकी केवल एक ही चिंता थी। उन्होंने अपना राजपाट आदि छोड़ा कि मुझे मृत्यु मेरे बहुत करीब है, तो उन्होंने कोई अरेंजमेंट का सोचा नहीं, उन्होंने उपाय सोचा, तुरंत ही वो निकल पड़े और जाते हैं गंगा के तट पर, और वहां शुकदेव गोस्वामी और अनेक महान ऋषियों का आश्रय लेते हैं। और वो कहते हैं गायतः विष्णु गाथा, हे महान वैष्णव आप भगवान विष्णु का वर्णन कीजिए, मैं केवल उस वर्णन को सुनना चाहता हूं, और अभी मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे पास डिवोटीज हैं, हरि नाम है, कृष्ण कथा है, गंगा नदी का तट है, अभी वो तक्षक उड़ के आ जाए, मुझे काटे या कुछ भी करे, मैं उससे भयभीत नहीं हूं। क्यों? क्योंकि उनका मन कृष्ण में बिल्कुल पूर्ण रूपे ने लगा हुआ था और वो उनको इस चीज की चिंता नहीं थी। लेकिन हमें अत्यधिक चिंता है, चिंता और चिता, चिंता अंतर है इसमें छोटी सी बिंदी का, है कि नहीं। तो हमें कृष्ण का चिंतन करने के लिए अत्यधिक सोचना चाहिए। वास्तव में इस संसार में हमें बचपन से सिखाया जाता है तुम मरे हम मरे एक दूजे के लिए, है ना सॉन्ग। ये संसार में व्यक्ति ड्रीम्स देखते रहता है, स्वप्न देखता है कि हम सब एक दूसरे के लिए बने हैं, नहीं। शास्त्र कहते तुम बने हम बने मरने के लिए, किसके लिए बने हैं, केवल मरने के लिए, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए मृत्यु हमें अपने सारे संबंधों को दूर कर देता है। अरे वास्तव में फाइनल कॉल है, क्या है फाइनल कॉल, आप मोबाइल में तो दिन रात हम कॉल रिसीव कर लेते हैं लेकिन एक लास्ट कॉल आएगा, उसके बाद आप मोबाइल का कॉल उठा नहीं सकते। तो हमें सोचना होगा कि अपना नंबर हमें पहले किसी को देके रखना होगा, कृष्ण को देके रखो या यमराज के दूतों को देके रखो। कृष्ण को देके रखेंगे हाँ तो फिर हमेशा के लिए हम कृष्ण के डिवोटीज के कॉल रिसीव कर सकते हैं, अन्यथा हमारे लिए असंभव होगा। तो संसार में सारी जो व्यवस्था है जितने भी एडवांसमेंट है वो सारे केवल मरने के लिए हो रही है। हाँ, प्रभुपाद बहुत इस पर जोर दिया करते थे। प्रभुपाद कहते थे एक साधक को हमेशा इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, तो ब्रह्मा के आयु से हमारे जीवन में क्या लाभ है? हाँ, ब्रह्मा के आयु की गिनती करते रहेंगे, मैथमेटिक्स डिटेल्स निकालते रहेंगे, तो भी हमें क्या, मेरे लिए क्या है? हमें शास्त्रों को देखना चाहिए कि मेरे लिए क्या शिक्षा है जो मैं अपने भक्तिमय जीवन में लागू कर सकता हूं, जिससे कृष्ण की शरणागति अत्यधिक मैं अपने जीवन में क्या कर सकता हूं, विकसित कर सकता हूं। तो हम कितना भी प्रयास करें तो हम नहीं बच सकते इस मृत्यु से। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, जातः शहे ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो भगवान दूसरे अध्याय में इस चीज पर जोर देते हैं, और फिर आठवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये एक डोर है जिससे तुम मेरी ओर वापस आ सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सीखना होगा। क्या सीखना होगा? एक कला सीखनी पड़ेगी, और वो कला क्या है? मेरा स्मरण करने की कला। इसलिए इस आठवें अध्याय के इससे पहले जो श्लोका है जिसमें भगवान कहते हैं 14वें श्लोक में 2H1 पेज नंबर, तो भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम योमाम स्मरति नित्यशः तस्यहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अपने पहले क्लास में इस पर श्रवण किया होगा। तो भगवान कहते मैं उस व्यक्ति के लिए सुलभ हूं। कौन से व्यक्ति के लिए सुलभ हो? जो व्यक्ति अनन्य भावना से मेरा नित्य रूप से स्मरण करता है। तो भगवान हमसे किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते। भगवान को हमारे स्किल्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस या जो मर्जी बल, ऐश्वर्य, धन, संपदा, ब्यूटी, इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। भगवान तो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। भगवान तो एक ही चीज चाहते हैं, प्रेमा भक्ति, और वो विकसित होती है जब हम उनका क्या करते हैं, नित्य स्मरण करते हैं। और नित्य स्मरण कैसे होना चाहिए? कृष्ण कहते अनन्य चेता, इस चेतना से कि जिसमें दूसरी और कोई अपेक्षा ना हो, दूसरा कोई हेतु ना हो। इस संसार में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें कुछ ना कुछ हेतु रखते हैं। मैं इसलिए ये कर रहा हूं, मुझे ये प्राप्त होना चाहिए। टेम्पल इसलिए जा रहा हूं, वहां कुछ मेरा हेतु है। भगवान की, भगवान को प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं कि उसके पीछे कुछ मुझे गेन होना चाहिए। उनकी सेवा इसलिए करूंगा, उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो ये सब हेतु हम अपने जीवन में रखते। बच्चों को पाल पोस के बड़ा इसलिए करना बुढ़ापे की लाठी बन जाए। तो ये सब भौतिक संसार में जितनी भी सेवा है, जितना भी ढोंग है सो कॉल्ड प्रेम का, उसके पीछे क्या छुपा है? स्वार्थ, हेतु। तो लेकिन भगवान कहते नहीं, बिना हेतु के मेरी भगवत भक्ति करनी चाहिए, मेरा स्मरण करना चाहिए। अनन्य चेता स्मरण सततम योमाम स्मरते नित्यशः तस्याहं सुलभः। उसी व्यक्ति के लिए मैं सुलभ हो। बाकी व्यक्ति फिर करोड़ों करोड़ों बहुजन्मे करी यदि श्रवण कीर्तन तबुत न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहु जन्म तक भी भगवान नाम लेते रहेंगे हेतु के साथ, हाँ, तो हमें यह सेवा करते रहेंगे भौतिक हेतु या अपेक्षा रखते हुए, तो हम भगवान के पास वापस नहीं जा सकते। इस संसार में ही हमारा आवागमन हमेशा होता रहेगा। इसलिए भगवान कहते स्मरण करो, लेकिन कैसे? अनन्य भावना से, बिना किसी भौतिक भावना से भगवान की सेवा करने की इच्छा व्यक्ति के हृदय में होनी चाहिए। और हमेशा सुबह उठते ही सोचना चाहिए कि मेरे पास आज का लास्ट डे है। तो भक्ति में क्या आती है? तीव्रता, डिटर्मिनेशन। नहीं, आज मेरे लाइफ का आखिरी दिन है, आज मुझे अपने राउंड सुबह ही करने चाहिए। हमें क्या लगता है, कल भी समय है ना, कल भी तो जब कर सकता हूं, कल भी भागवत पढ़ेंगे, एक अगले साल, दो साल के बाद, अभी इतनी अर्जेंसी क्या है? नहीं, हाँ तो भक्तिमय जीवन में हमें अर्जेंसी रखनी चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा, मैंने पिछली बार भी कहा था कि दो चीजें स्मरण रखो, कौन सी दो चीजें? एक है मृत्यु और दूसरा है कृष्ण नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान या भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं मृत्यु को सामने रखो तो आप हमेशा सोचोगे कि भगवत भक्ति करने के लिए मेरे पास बहुत कम समय है, मुझे अपना समय गवाना नहीं है, एक एक क्षण मेरे लिए मूल्यवान है, उसको अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए नियुक्त करना है। हाँ, नहीं तो हम सोचते हैं कि मेरे लिए मृत्यु नहीं है। इसलिए पद्म पुराण में वर्णन आता है, पृथ्वी दयते एन मेरु चापि विशीर्यते शुष्यते सागर जलम शरीरस्य ताकथा। वो कहते हैं पृथ्वी भी विनाश काल के समय जलकर विनष्ट हो जाती है, बड़े बड़े मेरु जैसे पर्वत भी टूट फूट के गिर जाते हैं, और जो सागर का जल है वो भी सागर सूख जाता है, तो ये शरीर की क्या कथा, शरीरस्य क्या कथा। हाँ, ये शरीर का इतना अहंकार क्यों, अपना शरीर आपके पास है। हाँ, तो ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट कृष्ण ने हमें प्रदान किया है, और इसका उपयोग यही है कि कृष्ण के पास वापस आने के लिए, वापस जाने के लिए ये शरीर रूपी एक रथ, एक व्हीकल भगवान ने हमें प्रदान की है, तो उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए वो हमें साधु गुरु और शास्त्र के माध्यम से सीखना चाहिए। और भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे हमेशा इन तीन के एसोसिएशन में रखो, साधु गुरु और शास्त्र, जिसके द्वारा ये मूल्यवान जो जीवन है उसको मैं भगवत चरणों में समर्पित कर सकता हूँ। ये शरीर वास्तव में एक रेंटेड हाउस है, किराए का घर है, जो कुछ दिनों के लिए हमें दिया गया है, और कभी भी खाली करना पड़ेगा, नोटिस, बिना नोटिस के। तो इसलिए शास्त्र हमें ये सिखाते हैं कि जैसे ही शरीर का जन्म हुआ, उस शरीर के जन्म के साथ ही उसका मृत्यु ने भी जन्म ले लिया है। अब भागवतम में पढ़ेंगे, कृष्ण बुक में वसुदेव और कंस का जो संवाद है वो बहुत शिक्षाप्रद है। कंस के सारे प्रयास किसकी ओर थे, जल्दी मरने के लिए, जो भी बालक जन्म ले रहा था उसको मार रहा था और जल्दी जल्दी आठवें की ओर जा रहा था, मतलब अर्जेंसी थी उसको कि आठवें तक पहुंचो, लेकिन आठवां उसका क्या था, काल था। हम मृत्यु के रूप में भगवान कृष्ण उसके लिए इंतजार कर ही रहे थे, कंस के लिए। मतलब आप जितना मर्जी प्रयास करो, कंस ने कितना प्रयास किया, ऐसे बड़े बड़े धुरंधर हुए हैं जिन्होंने इतना सब कुछ, अपना बुद्धि, अपना धन, अपना ऐश्वर्य, सामर्थ्य, बल, सब कुछ लगाया, लेकिन कोई बचा नहीं। हिरण्यकशिपु के बारे में हम सुनते हैं, हिरण्यकशिपु बहुत चतुर चलाक व्यक्ति था, होते ना कुछ लोग होते बड़े चलाक होते हैं, तो वैसे ये चतुर चलाक था, उनको लगा ब्रह्मा को तो कोई बुद्धि है ही नहीं, उनको पता नहीं चार मुख है ब्रह्मा के पास, चार ब्रेन है, ब्रह्मा ने दे भी दिया उनको वर, लेकिन भगवान तो सबसे बड़े बुद्धिमान है, सारे बुद्धि का वो उगम स्थल है। तो भगवान प्रकट होते किस रूप में, नरसिम्हदेव के रूप में, नरसिम्हदेव के, तो नरसिम्हदेव के रूप में प्रकट होते हैं, जितने भी उनको वर आदि मिले थे उन सबको विनष्ट करते हुए उनका काल बनते हैं। और पहली सर्जरी कौन करते हैं, हार्ट सर्जरी, हाँ कोई उनको ऑपरेशन थिएटर की आवश्यकता नहीं थी, कहाँ जाके बैठ गए लेकर अपने पेशेंट को, डोर के बीच में, और सब लोग देख रहे थे, देवतागण देख रहे थे, प्रहलाद भी देख रहे थे सब, और भगवान ने देखा, अरे ऑपरेशन हो गया, इतना बड़ा काम मैंने किया, मुझे कोई माला ही नहीं पहना रहा है, हम वेट करते हैं ना माला कब आएगी, क्लास के लिए कब से बैठा हूं अभी तक हाँ माला पहना ही नहीं। तो भगवान ने भी देखा कि इतना मैंने इसको मारा, इतना रोमांचकारी कार्य किया है, अभी तक माला लेकर कोई डिवोटी पहुंचा नहीं। तो फिर निकाली माला कहां से, हिरण्यकश्यप की जो अतड़िया थी वही निकाली और पहन ली। हाँ, तो भगवान हम जितना मर्जी अपने भौतिक बुद्धि स्किल्स आदि लगाए इस संसार में बने रहने के लिए, ये संसार हमारे लिए नहीं बना है, ये संसार बना है कृष्ण की सुख के लिए। जब ब्रह्मा को भगवान ने ये जो सृष्टि के इंग्रेडिएंट्स दिए थे तो उसका उद्देश्य यही था कि उन चीजों के द्वारा भगवान की सेवा की जाए। लेकिन जीव इन सारे चीजों का दोहन करता है और अपने एंजॉयमेंट के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वो कष्ट प्राप्त करता है। तो इसलिए इस श्लोक में प्रभुपाद ब्रह्मा की आयु का वर्णन करते हैं, इतनी लंबी आयु है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, मुझे लंबी आयु की आवश्यकता नहीं है, जिस आयु में आपका स्मरण ना हो, जिस लंबी आयु में आपके भक्तों का संग ना हो, जिस लंबी आयु में आपकी सेवा करने का अवसर ना हो, ऐसी आयु मुझे लंबी नहीं चाहिए। हाँ, क्या करेंगे ऐसी लंबी आयु का, जहां कृष्ण प्रसाद ना हो, भक्तों का संग ना हो। हाँ, तो ऐसी लंबी आयु तो इसलिए तो भागवतम की शुरुआत में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, हाँ तरवा किम न जीवंती, ये वृक्ष भी तो क्या जीवित नहीं है, कितनी लंबी आयु है वृक्षों की। हाँ, तो क्या फायदा है ऐसी आयु का, यदि हमारे जीवन में हम कृष्ण के भक्त नहीं बन रहे हैं, कृष्ण की गंभीरता से सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से शास्त्र हमें बारंबार प्रेरित करते हैं और मृत्यु की भी मृत्यु ढूंढने के लिए हमें इंस्पायर करते हैं। मृत्यु की मृत्यु क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें जो मृत्यु है उसकी भी मृत्यु ढूंढनी है। इसलिए मुकुंद माला में राजा कुलशेखर कहते हैं, इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्य अवशम शति संत जर्जरम किम औषधम पृच्छसि मूढ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिबम। वो कहते इदम शरीरम परिणाम पेशलम, ये जो शरीर है ये विनष्ट होने वाला है, पतत्ति अवशम पतन हो जाएगा इस शरीर का, एक दिन खत्म हो जाएगा, और शतसंधि जर्जरम, इसमें जो जॉइंट्स है ना, कई हजारों जॉइंट्स है, वो सारे आवाज करने लगेंगे, आपको फिर अलार्म क्लॉक की आवश्यकता नहीं है, नींद नहीं आएगी। तो फिर जब बुढ़ापा आता है तो सारे जॉइंट्स क्या करने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं, फिर अलार्म क्लॉक की आवश्यकता नहीं होती उठने के लिए मंगल आरती, वो सारे बजते रहते हैं। तो इसलिए कुलशेखर कहते शतसंधि जर्जरम, ये जो सहस्र या सौ जॉइंट्स हैं वो हमेशा आवाज करेंगे, कष्ट देंगे। तो कहते किम औषधम पृच्छसि मूढ दुर्मते, अरे मूर्ख व्यक्ति थोड़ा इसका औषध तो पूछो कि ये सब हो रहा है, मैं मरने जा रहा हूं, हड्डियां आवाज कर रही है, इसका दवाई वो पूछो। तो कहते एक ही दवाई है, निरामयम कृष्ण रसायनम पिबम। हाँ, रसायन बोतल में होता है ना, मैं जब फर्स्ट टाइम दिल्ली आया तो गुड़गांव में एक प्रोग्राम के लिए जा रहा था दिल्ली टेम्पल से, अभी नया 2000 में, तो उस समय टैक्सी से हम आ रहे थे तो मैंने एक लंबा लाइन देखा, मैंने सोचा ये लंबा लाइन इतना किस चीज के लिए खड़ा है। वो लाइन लंबे एंड से शुरू हो रहा था, गामारी गाड़ी आगे आगे गए तो जहां लाइन शुरुआत हो रही थी तो वहां पहुंचे तो वहां लिखा था ठेका देशी दारू का ठेका। तो मैंने सोचा कि ये क्या है, ये भी तो कोई रसायन पीने के लिए ये लोग क्या है लाइन में खड़े हैं, तो हम अपने जीवन में कई रसायन पी चुके हैं, लेकिन इसके लिए एक ही रसायन है। राजा कुलशेखर कहते हैं, कौन सा रसायन पियो? कृष्ण रसायनम पिबान। कृष्ण रसायन को पियो, और कृष्ण रसायन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे।
तो ये जो कृष्ण रसायन है वो इसमें भरा पड़ा है। किसमें भरा है? प्रभुपाद के ग्रंथों में। तो ये महीना ये रसायन की ये बोतल सबके हाथ में क्या करो? थमा दो। हाँ, ये हमारा कर्तव्य है। ये बोतल आपके हाथ में आ गई भगवद गीता रूपी, अभी हमारे ऊपर है दिन में कितनी बार ढक्कन खोलना है। कुछ भक्त है वो तो पूरे साल भर नहीं खोलते, कहते गीता तो दूसरों के लिए है मेरे लिए नहीं है। बल्कि हमें रोज कम से कम कई बार इसका पान करना चाहिए, और जो भी हमसे मिले उसको भी पिलाना चाहिए। तो कृष्ण कहते जो खुद इसको पीता है, गीता अमृतम पीतवा, गीता अमृत है ना, ये इसको पीने के लिए बोला है। तो इसको पियो, और जिसके भी संपर्क में आओ उसको भी पिलाओ। हाँ, तो फिर भगवान कहते वो व्यक्ति क्या है? नच तस्माद मनुष्येषु कश्चिन मे प्रिय कृतमः, उससे अधिक कोई व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है जो खुद पिया हुआ है और दूसरों को भी पिला रहा है। कृष्ण के व्यक्ति प्रिय बन जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये तो गीता मैराथन या बुक मैराथन शुरू किया है, ये हमारे लिए है, हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए है। यदि आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं दूसरों को कृष्ण भावना देने का, इन ग्रंथों को देने का, तो हमें अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। हम कृष्ण के बहुत नजदीक जाते हैं, हमें पता नहीं है, हम अज्ञान में है कि किस किस प्रकार से इन ग्रंथों के द्वारा हजारों हजारों लोग जुड़ रहे हैं। मैं जैसे मैं एक क्लास दे रहा था कल, तो मैंने एक स्टोरी शेयर की वहां कल शाम को। तो मैंने कहा कि फ्रांस में एक माताजी थी, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकली, एक ट्रेन में चढ़ गई पेरिस में। तो वहां जब वो चढ़ी तो उसके हाथ में एक बैग में बुक्स थे, और कृष्णा बुक उसके हाथ में थी। और वो ट्रेन में जब जा रहे थे दिखाते हुए, उसने एक दिखाया कृष्णा बुक, एक व्यक्ति दौड़ते हुए वहां आया सामने अचानक, उसको कहा ये कृष्णा बुक है। उसको इतना गुस्सा आया, उस माताजी को मारने लगा, इतना खून भी निकलने लगा, और वो बुक को लिया नीचे फेंका, उसके ऊपर अपने पांव बूट से चप्पल या जो भी जूते पहने होंगे उस पुस्तक को तोड़ने मरोड़ने लगा। और उसने कहा मुझे फिर से तुम यहां नहीं दिखने चाहिए। वो तो केवल सहन कर रहे थे। उसने कृष्ण को प्रार्थना की कि कृष्णा आप क्या करो, ये व्यक्ति अज्ञानी है, इसे पता नहीं है ये क्या कर रहा है, आप इसको क्षमा कर दीजिए। भक्त का ये हृदय महात्मा, इसलिए भक्त को महात्मा कहते हैं। तो वो तो अगला जो स्टेशन आया तुरंत ही तो उतर गई ये व्यक्ति, वो बुक इसके पास ही रह गई, वो जो बुक थे फटी हुई वो बुक पास रह गई, और वो घर गया। घर गया, पहुंचते ही उसने अपने पत्नी के सामने डाइनिंग टेबल में फेंका वो बुक, और कहा देखो आज मैंने कुछ धार्मिक लोग थे उनकी धज्जियां उड़ा दी, देखो क्या करके आया हूं। क्योंकि व्यक्ति को अच्छा लगता है ना जब अपना जो ग्लोरीज है जब घर में जाकर क्या करता है, शेयर करता है, तो उसको गर्व महसूस होता है। तो उस समय के लिए वो बुक उस डाइनिंग टेबल पर ही पड़ी रहे, ये सब लोगों ने भोजन करके चले गए। तो नौकरानी वहां आई, तो नौकरानी ने देखा ये पुस्तक बड़ी ऊपर से तो अच्छे दिख रहे हैं, कवर सारे पन्ने इधर उधर फटे हुए हैं। हाँ, उसने सोचा कि घर के बच्चों ने कुछ किया होगा। तो उस नौकरानी ने ग्लू लिया, हर एक पन्ना चिपका दिया, और जाके कहाँ रख दिया? उस व्यक्ति के शेल्फ में रख दिया, किताबों का जहां ये होगा स्थान। और फिर इस व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हुई कि उसकी पत्नी कोई ऐसी जानलेवा बीमारी हुई कि जिसके कारण एक साल के अंदर एक पत्नी भी मर गई, उसकी बेटी भी, और एक्सीडेंट से बेटा भी, तभी कोई नहीं बचा घर में, ये अकेला ही था 1.5-2 साल के बीच में। तो फिर उस समय उसने सोचा इतना कष्ट इतना टेंशन, मुझे आत्महत्या करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? आत्महत्या सोचते इस एंड सब चीजों का। तो जब उसने ये सोचा चलो अभी आत्महत्या करने से पहले बाइबल पढ़ता हूं, कुछ तो अच्छा काम करके मरना अच्छा है। पूरे जीवन नास्तिक था, अभी ये नास्तिक था तो उसके घर में बाइबल भी नहीं थे। वो किताबों के वहां गया तो उसको कौन सी बुक मिली होगी? कृष्ण बुक। अभी उसको भूल गया था, कुछ साल बीते थे, उसको कुछ याद नहीं था कि कौन सी बुक है क्या है। लगी तो रही है स्पिरिचुअल बुक, उठाए पढ़ने लगा शुरुआत से। पूरी रात उसने कृष्ण बुक पढ़े और फिर सुबह ढूंढने लगा इस्कॉन पैरिस, एड्रेस था इस्कॉन पैरिस टेम्पल कहाँ है। ढूंढते हुए गया कि आज मुझे ज्वाइन करना है अपना मंदिर। तो भक्तों ने कहा वैसे मंदिर खाली रहता है, हम तो ढूंढते रहते कौन लोग आके रहे मंदिर में, भक्तों की संख्या बढ़े। कि अचानक एक भक्त आ रहा है, तो प्रेसिडेंट जो भी थे वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा अच्छा है आप रहो। तो कई चीजों में एक्सपर्ट था, वो भक्तों के संग में चांटिंग करने लगा सेवा, और उसको सेवा क्या दे, बुक गोडाउन पुस्तक डिपार्टमेंट उसको संभाल दिया। और अभी वो कंटिन्यू अपना भक्ति कर रहा था। कुछ महीने बीते हैं तो वहां के कई मंदिरों का एक महामिलन था जिसमें सब मंदिरों के बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स वहां पहुंचे थे। तो ये भी जब वहां पहुंचा तो वहां वो माताजी नजर आई उसे, जिसको इसने क्या किया था, ट्रेन में मारा था। वो देखा कहा तू अरे ये यहाँ कैसे गया, और उसके सामने दंडवत प्रणाम कि आपके कारण में अभी क्या बना हो, भक्त बन गया। तो हम सोचते हमें इसका वैल्यू पता नहीं है कितने मूल्यवान है, इसलिए है प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया इन ग्रंथों को पहुंचाओ बाहर। हाँ ये जाएंगे या अपना काम करेंगे, हमारा काम क्या है, लोगों तक ये दे देना। तो उसके लिए है कृष्ण हमारा प्रयास देखना चाहते हैं। कृष्ण चाहते ये कृष्ण के लिए है, हमारी पर्सनल सेवा है इनके ग्रंथों का आगे तक पहुंचाना। इस प्रकार से हम प्रभुपाद की सहायता कर सकते हैं उनके ग्रंथों का वितरण करके कृष्ण की सेवा के लिए। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इस महीने में इन ग्रंथ वितरण में हम अधिक से अधिक सक्रिय हो, ताकि प्रभुपाद और गुरु परंपरा इसे प्रसन्न हो सकती है। तो इस श्लोक में प्रभुपाद इसी पर ही जोर दे रहे हैं कि ब्रह्मा की इतनी लंबी आयु है। हाँ लंबा कैलकुलेशन करके प्रभुपाद ने बताया, अलग अलग युगों का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कलयुग कलह का युग है। तो ऐसे कलहपूर्ण युग में हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भगवान के नामों का आश्रय ग्रहण करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभुपाद ने जोर दिया इस तात्पर्य में कि किस प्रकार से ब्रह्मा के इतनी लंबी आयु होकर भी वो भी क्या है, मरणशील है। तो हम भी मरणशील हैं। हाँ तो मरना है तो कैसे मरना चाहिए, हाँ भक्त की तरह, हाँ जीवा में कृष्ण का नाम हो। तो कोई व्यक्ति सिंसियरली प्रयास करता है तो कृष्ण कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, मृत्यु के समय में मैं क्या करता हूं उसको स्मरण दिलाता हूं। इसलिए हमारे ऊपर है कि पूरे जीवन में हम कितना सिंसियर गंभीरता से कृष्ण भक्ति का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हाँ और ये कौन जानता है, केवल कृष्ण और हम, बस दो ही लोग, कितना हम गंभीरता से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसलिए हमें यदि भगवत प्राप्ति करने में हम गंभीर हैं तो ये जो विधि प्रोसेस प्रभुपाद ने दी है उसको भी हमें गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए। सॉरी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के श्रील प्रभुपाद के जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी के समवेत गौर भक्तवृंद।
ब्रह्म की पिता है गौर प्रेमानंद।